ओम शांति। प्यारे बाप दादा के घर में बाबा के मीठे प्यारे बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए, अपना पुण्य जमा करने के लिए आए हैं। ऐसी भाग्यवान पुण्य जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को संगम युग की सुहावनी घड़ियों में बहुत बहुत बधाई और स्वागत। आज आप सबका इस सीजन का पहला दिन है। यूं तो हो सकता है आप कल भी आ गए हों, लेकिन विशेष रूप से क्लासेस का प्रारंभ होना उसका ये पहला दिन है। आज का हमारा विषय अति सुंदर मगर विषय कुछ गंभीर है। हमारा आज का विषय है निश्चय बुद्धि। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। मन में भी आता है निश्चय बुद्धि होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि मन में कोई ना कोई कभी ना कभी संशय आ जाता है। कभी कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है, कोई समस्या ऐसी आ जाती है, कोई पेपर आ जाता है, तो जीवन के पेपर में उतार चढ़ाव में समस्या में मन बुद्धि डामाडोल होने लग जाते हैं। लोग मिलने जुलने वाले मित्र संबंधी संपर्क वाले भी संशय बुद्धि बनाने में खूब सहयोग देते हैं। किसी को बिजनेस में घाटा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, कहीं अकाले मृत्यु हो जाए, कोई बीमार हो जाए, लगी हुई नौकरी छूट जाए, अनेक बातें हमारे आगे आ सकती हैं। एक तरफ हमारी अपनी उलझन अपनी समस्या होती है कि क्या करें, और हमारे मिलने जुलने वाले लोग संपर्क वाले लोग मित्र दोस्त झट से कह देते हैं कि देखो भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, वहां जाएंगे या तो घर बार छूट जाएगा, घर बार आपका उजड़ जाएगा, अनेक प्रकार की बातें लोग सुनाते हैं। कई बार लोग हमें कहते हैं कि भाई, पहले तो आप हनुमान जी की पूजा करते थे, राम की पूजा करते थे, श्री कृष्ण की पूजा करते थे, अब आप यहां गए तो शिव बाबा कहते रहते हो और ब्रह्मा कुमारी बहनों के पीछे पीछे जैसे वो कहती हैं, आप कहते हैं नहीं, हमारी दीदी ने ऐसे कहा है, नहीं हमारे बाबा ने ऐसे कहा है, तो आपने हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण जी को छोड़ दिया, तो स्वाभाविक है आपको घाटा पड़ेगा ही पड़ेगा। तब हमारा मन भी डामाडोल होने लगता है। कोई कहता है आप पहले एकादशी का व्रत रखते थे ना, अब आपने छोड़ दिया ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद। पहले आप ग्यारस रखते थे, पहले आप पूर्णमासी रखते थे, पहले आप करवा चौथ करते थे, पहले आप फलाना व्रत करते थे, अब आपने छोड़ दिया ना। देखो इसीलिए आपके आगे कष्ट आ रहे हैं, आप समझते ही नहीं हो। तो हमारे मन में भी संशय आने लगता है कि हाँ हो सकता है, मैंने व्रत छोड़ा है ना इसलिए मेरा बेटा बीमार हो गया, मैंने व्रत छोड़ा है तो मेरे घर में ऐसा हो गया। क्या विचार है आप सबका कि ये सब बातें प्रैक्टिकल हैं या नहीं है? क्या सोचते हो, व्रत छोड़ने से नुकसान हुआ, बाबा का बनने से नुकसान हुआ? तो हम निश्चय बुद्धि किस बात में बने? निश्चय बुद्धि बनना जरूरी है? क्या महत्व है निश्चय बुद्धि का? ठीक है, अगर बाबा का बनने से हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है तो बाबा को छोड़ देते हैं, क्या बड़ी बात है? क्या विचार है, बाबा को छोड़ दें माताएं? क्योंकि माताएं बहुत व्रत रखती हैं, चांद को देखेंगे, कोई चौथ का चंद्रमा देख रहा है, कोई देख रहा है, कहते बहन जी क्या करें, गृहस्थी में रहते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है या कौन सा आपको ऐसा लाइसेंस मिला हुआ है कि जो गृहस्थी में रहते हैं उनको चौथ का व्रत, करवा चौथ का व्रत, संकट चौथ का व्रत, पता नहीं कौन कौन से व्रत हैं, वो रखने जरूरी हैं। माताएं व्रत रखना जरूरी है, शरीर के लिए बेशक रखिए, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमार है, वेट ज्यादा है, बेशक 10 दिन व्रत रखिए, लेकिन चौथ का व्रत, ग्यारस का व्रत, पूर्णमासी का व्रत नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारे निश्चय की परख है। वास्तव में भक्ति में जो हमें व्रत आदि रखने के लिए कहा गया था वो क्यों कहा गया था? आप कहेंगे किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है आप ये व्रत करिए, आप ये व्रत करिए, लेकिन ये व्रत की प्रथा क्यों चली, व्रत क्यों रखने पड़े? जैसे जैसे सृष्टि पर मनुष्यों की वृद्धि होने लगी और एक छोटे परिवार से गांव बनने लगा, गांव से शहर बनने लगा, बड़ा बड़ा समाज बनने लगा, इस समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, आपसी संबंधों में विश्वास रखने के लिए, आपसी संबंधों में प्रेम बढ़ाने के लिए, आपसी संबंधों में श्रेष्ठता लाने के लिए ये सब व्रत आदि की परंपराएं प्रारंभ हुई। आप सोचिए, कोई भी स्त्री करवा चौथ अपने पति के लिए व्रत रखती है, अगर उसकी नहीं बनती होगी, वो डाइवोर्स ही होगी, तो क्या वो व्रत रखेगी? वो नहीं रखेगी, वो कहती है मुझे व्रत रखना ही नहीं है। किसी के घर में बेटा नहीं है, कहना नहीं मानता है, नालायक है, क्या वो चौथ आदि का व्रत रखेंगे? नहीं रखेंगे, कहेंगे इसके लिए क्या व्रत रखना है। तो ये व्रत आदि जो हमारी परंपराएं थी, इसके पीछे दो कारण थे, एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दूसरा कारण था हमारा समाज, हमारा परिवार, उसका जो एकता है, संगठन है, वो बना रहे, आपसी विश्वास बना रहे। आज जिस माहौल में हम सब रह रहे हैं, ये सारी दुनिया चल रही है, आज किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं है, है किसी को किसी पर विश्वास? आप देख लीजिए जहां भी आप रहते होंगे, जिस भी कॉलोनी में, मोहल्ले में रहते होंगे, आप देख लो रोज क्या क्या हो रहा है। अब बाबा कहता है हम बच्चों को, बच्चे निश्चय बुद्धि बनो, निश्चय बुद्धि का ही महत्व है। अगर हमारे अंदर ये निश्चय है, बाबा क्यों कहता है रोज, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये निश्चय चाहिए, मैं आत्मा हूं। निश्चय होगा तो परिवर्तन होगा, निश्चय होगा तो विजय होगी, निश्चय होगा तो आगे बढ़ेंगे। आप अपने परिवार के लिए दिन रात काम करते हैं क्योंकि आपको निश्चय है, आपका उस परिवार से स्नेह है। और निश्चय के अगर हम भक्ति मार्ग के उदाहरण ले, मीरा का निश्चय कितना था? मीरा का निश्चय कोई बता सकता है कितना निश्चय था? विष का प्याला क्या हो गया? हाँ, अमृत बन गया। आप देखिए उसका निश्चय, भगवान को याद करके, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, और उसको जहर का प्याला दिया गया, वो जहर का प्याला भी गट गट करके पी गई, और प्याला क्या बन गया? जहर का प्याला क्या बन गया? अमृत बन गया। ये है निश्चय। और हम तो क्या कहते हैं बहन जी, घर वाले कहते हैं आप ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने लगे हो ना, इसलिए आपका धंधा नहीं चल रहा है। धंधा इसलिए नहीं आपका चौपट हो रहा कि आप यहां आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार और हमारे जो संकल्प, हमारी जो भावना होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं आया है। मीरा के लिए जहर अमृत कैसे बना? उसका प्रभु प्रेम और उसकी दिल की भावना ने उस जहर को क्या बना दिया? अमृत बना दिया। ध्रुव प्रहलाद का भगवान में निश्चय, उसको आग में लेकर बैठ गई उसकी बुआ और वो जला नहीं और वो जल गई। क्या मेरा शिव बाबा में इतना अचल, अटल, अडोल निश्चय है? यहां तक हम देखते हैं कई बार, अब हमारे जो नई नई माताएं बहनें आती हैं, अभी भी हम देखेंगे कईयों को, कहते हैं बहन जी सफेद ड्रेस, सफेद तो हमारे समाज में बुरी मानते हैं, और कोई कोई देखो बड़ी शान से, नशे से अपनी सफेद यूनिफॉर्म में रहते हैं। हमारे बहुत से भाई भी हैं ऐसे। हर समाज में सफेद यूनिफॉर्म का एक ही अर्थ है, लेकिन मैं एक राजयोगी हूं, मैं एक तपस्वी आत्मा हूं, मुझे भगवान मिला है, मुझे भगवान का ज्ञान मिला है, तो मेरी सफेद यूनिफॉर्म का क्या अर्थ होगा? मेरी सफेद यूनिफॉर्म का अर्थ, आप तो सोचते हैं हम सफेद पहनेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं ये विधवा है, लेकिन हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जब कहीं बाहर जाती हैं सेवा के लिए, यात्रा के लिए, अगर कहीं बैठने को जगह नहीं होती है तो यही सफेद वस्त्र देखकर दूसरे लोग कहते हैं बहन जी आइए आइए आप बैठिए। देते हैं जगह या नहीं देते हैं? उनका मस्तक झुकता है या नहीं झुकता है? तो ये सफेद रंग हमारी पवित्रता की निशानी है, ये सफेद वस्त्र हमारे जीवन की शक्ति है, हमारे लिए भी शक्ति है। मैंने ये सफेद वस्त्र पहने हैं, अब मैं ये सफेद वस्त्र पहनकर कोई गलत काम कर सकती हूँ? कर सकती हूँ? यहां से बाहर जाऊं और किसी से झगड़ा करने लग जाऊं, कहेंगे बहन जी आपने तो ये टीचर का बैच लगाया हुआ है, आप तो क्लास, आप झगड़ा भी करते हैं? तो ये तो हमारा सुरक्षा कवच है। लेकिन आजकल हमारे भाई बहन जल्दी से घबरा जाते हैं अरे सफेद पहनेंगे ना, लोग कहेंगे लो क्यों तुमने इतनी छोटी उम्र में सफेद कपड़े पहन लिए, कुछ हो गया क्या? लेकिन नशा हो, ये सफेद वस्त्र मेरा सुरक्षा कवच है, ये सफेद वस्त्र मुझे शक्ति देने वाला है, ये सफेद वस्त्र दूसरों के मन में श्रद्धा पैदा करने वाला है, तो हमें कभी भी सफेद वस्त्र को धारण करने में संकोच नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। मैं इतने अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ जहां मेरी ये यूनिफॉर्म है। माताएं क्या विचार है, सफेद पहनना चाहिए या रंगीन ही भला है? हैं? हम ये नहीं कहते आप सफेद पहनिए। अपनी घर गृहस्थी में आप अच्छे, बाबा भी कहता था, बच्चे घर में रहते हो ना, कहीं जाते हो, बहुत अच्छा ड्रेसअप होके जाओ, बहुत अच्छा चटकीला मटकीला पहन के जाओ। लेकिन जब हम क्लास में आते हैं, हम मधुबन में आते हैं, तब तो हम सफेद वस्त्र पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं? क्या विचार है? जो कहते हैं पहन सकते हैं माताएं, मधुबन में तो पहन सकते हैं ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने घर में भले रंगीन पहनो, आपको घर में कोई दिक्कत नहीं है, बाबा की मना नहीं है, खूब अच्छा अच्छा पहनो। भाई भाई सोचते हैं शायद माताएं, भाई भी तो रंगीन पहनते हैं कहीं, हाँ सफेद वस्त्र पहनना चाहिए? या भाई कहेंगे हम तो बाहर घूमते हैं, पॉल्यूशन बहुत है, बाइक पर जाते हैं, कपड़े काले हो जाते हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन बाबा के घर में आना, मधुबन में आना, यहाँ हमारी यूनिफॉर्म वाइट होनी चाहिए। क्या विचार है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ कोई कोई तो सोच रहे हैं कि कहें या नहीं कहें, कोई बात नहीं है। आपने अभी रंगीन पहना है तो कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी बाहर जाओ आप, नहीं। लेकिन ये समझने की बात है कि सचमुच हमें कितना ऊंचा ज्ञान मिला है। आज भी सवेरे बाबा ने मुरली में कहा, इस सहज ज्ञान सहज योग के द्वारा बच्चे मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, राजाओं का राजा बनने वाले हैं, तो हमारे में तो कितनी रॉयल्टी, कितनी हमारी डिग्निटी होनी चाहिए, हमारे चेहरे से वो दिव्यता दिखाई देनी चाहिए। अगर हमारा चेहरा भी वही है जैसे दुनिया वालों के हैं, उदास, मायूस, थके हुए, निराश, तो बताइए योगी और संसारिक जीवन दोनों में क्या अंतर हुआ? तो हमारे जीवन में, हमारे चेहरे पर खुशी कैसे आएगी? हम बाबा के घर में आते हैं, यहां हमारी कोई मजबूरी नहीं है, है कोई मजबूरी? आप मजबूरी से आए हैं, लेकिन हम दिल से आए, खुशी से आए, लगन से आए। बहुत से भाई बहन सालों साल आते रहते हैं और सालों साल आने के बाद भी यही प्रश्न पूछते हैं, बहन जी योग नहीं लगता है, बहन जी व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। आपने सच्चाई से ये बात कही, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी विचार किया है कि मुझे ये व्यर्थ क्यों आ रहा है? अगर मेरा निश्चय एक बाबा में है, मेरा दिल का स्नेह, میرا دل کا پیار ایک بابا سے ہے، کیا میرے اندر یہ انوبھو ہے، محسوستا ہے کہ سنسار کا سب سے اونچے تے اونچا گیان مجھ آتما کو ملا ہے؟ تو کبھی بھی ہمارے اندر نراشا، اداسی، مایوسی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ مجھے اتنا اونچا اتنا شریشٹھ گیان ملا ہے۔ بابا کہتے ہیں نا، بچے اپنے سے باتیں کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب یوگ میں بیٹھتے ہیں؟ اگر ہم ابھی کہیں نا چلو 15 منٹ یوگ میں بیٹھیں گے، کوئی کوئی تو بہت اچھا بیٹھیں گے ایک دم ایسا ہو کر، اور کوئی کوئی بس۔ اب آپ سب ہنس رہے ہو، میں نے غلط کہا کیا؟ کوئی کوئی بیٹھے بیٹھے ہیں، کیونکہ اپنے سے آپ بات نہیں کرتے ہیں۔ بات کرو، وچار کرو، ہم کس استھان پر بیٹھے ہیں، ساکشی ہو کر دیکھیے۔ جیسے کہتے ہیں نا آپ اپنی بھاشا میں، بھائی ہم تو نہ کسی کو اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں، ایسے ڈیٹیچ ہو کے آپ دیکھیے، کیا سنسار میں ایسا کوئی استھان ہے جہاں اتنی شانتی سے لوگ بیٹھ کر کے بھگوان کا دھیان کرتے ہوں؟ آپ کوئی بھی آشرموں میں چلے جائیے، ستسنگوں میں چلے جائیے، یہاں تک کہ وہاں جو ستسنگ کرانے والے سادھو سنت مہاتما کتھا واچک ہوتے ہیں، آپ ان کا بولنے کا ڈھنگ بھی دیکھیں گے تو اتنا اٹپٹا سا ہوتا ہے، جو لگتا ہے یہ بول رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ آپ کو بھی جیون میں سمے ملا ہوگا، کبھی بھاگوت سننے گئے ہوں گے، کبھی رامائن سننے گئے ہوں گے، کبھی کسی کتھا واچک کی کوئی کتھا سننے گئے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو بولتے ہیں، اور بابا کے گھر میں ہمارے بڑے بھائی بہنیں جو بولتے ہیں، ہماری دادیاں جس طریقے سے ہمیں سمجھاتی ہیں، ایسے کوئی سمجھاتا ہے؟ سمجھاتا ہے تو ایک بھی کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ فلانی جگہ پر ایسے سمجھایا جاتا ہے۔ اتنے اونچے ستھان، اتنے اونچے گیان کی پراپتی مجھ آتما کو ہوئی ہے، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اب بتائیے اس میں سنشے کی کون سی بات ہے؟ بھکتی میں پرسنگ ہے۔ ایک لویے نے کیا کیا، ایک لویے نے کیا کیا تھا؟ گرو کی پرتیما رکھ کے ہی تو سیکھ لیا نا۔ اگر ہم یہاں سب بیٹھے ہیں نا، کوئی آگے بیٹھا ہے اور اس کو بٹھانے والا بھائی اگر آ کے یہ کہہ دے، وہ پہچانتا نہیں ہے آپ کو، بھائی جی یا بہن جی آپ یہاں سے اٹھ کے نا وہاں چلے جائیے، تو ہمارے من بس، ہم تو ڈسٹرب ہی ہو جائیں گے۔ اچھا یہاں تو ہماری کوئی پوچھ نہیں، پتا نہیں بڑے بڑوں کو پوچھتے ہیں، پتا نہیں پیسے والوں کو پوچھتے ہیں، پتا نہیں ان کو پتا ہی نہیں میں کون ہوں، دیکھو میں آگے بیٹھی تھی اور مجھے اٹھا کے پیچھے بٹھا۔ اتنی سی بات میں ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ایکلویہ کو گرو جی نے سپشٹ کہہ دیا تم نیچ جاتی کے ہو، میں تمہیں نہیں سکھا سکتا۔ اس کو کوئی فیلنگ نہیں آئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، جنگل میں چلا گیا، گرو جی کی پرتیما بنا لی اور تیر چلانے کا ابھیاس کرنا شروع کر دیا، اور ارجن سے بھی آگے نکل گیا۔ ارجن جو بھگوان کے سنگ رہنے والا تھا، جو بھگوان کے سامنے تھا، جو بھگوان کے ساتھ تھا، وہ پیچھے رہ گیا، اور وہ ایک لویے جس کو نیچ سمجھا گیا تھا، وہ آگے نکل گیا۔ अगर मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, कौन कौन है निश्चय बुद्धि, सोच के हाथ उठाना। अगर मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं तो मुझे कभी भी कोई भी बात की फीलिंग नहीं आएगी। मुझे तो बहन जी ने टोली नहीं दी, मैं इतनी सेवा करके आई, मेरे लिए तो एक शब्द भी नहीं बोला। कई बार कई कहते बहन जी इस भाई के लिए आप दो शब्द तो कह दो, भाई तू बहुत अच्छी सेवा करता है। हम सेवा किसकी कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? आज हम मधुबन में आए हैं, सेवा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो इस सेवा के लिए? हम मधुबन की सेवा कर रहे हैं या बाबा को, मधुबन वालों को थैंक्स दें जो हमें भाग्य बनाने का मौका दिया है? अगर आज मुझे ये सेवा न दी जाए तो मेरा भाग्य बनेगा? सेवा कोई भी हो, वो चाहे बर्तन उठाने की हो या लिफ्ट चलाने की हो, वो माइक लगाने की हो या लाइन बनवाने की हो, मैं किसकी सेवा कर रही हूं? क्या मैं आत्मा ऐसी नशे में चूर हूं? वाह बाबा वाह, आपने मुझे कबूल किया, आपने मुझे इस योग्य समझा जो मैं आपके घर में सेवा करूं, आपने मुझे स्वीकार किया। वाह बाबा वाह वाह, मेरा भाग्य। क्या हम ऐसा महसूस करते हैं? क्या हम ऐसा महसूस करते हैं या हम यही देखते रहते हैं, अरे भाई आपको, अच्छा आपको तो बहुत अच्छी सेवा मिली है, हाँ मुझे तो ये सेवा मिली है, मुझे तो ये नहीं ये मिली है, मुझे तो यहां नहीं यहां ठहराया है, मुझे तो अच्छा यहां चार लोगों के साथ रखा है। अरे चार दिन हमने रहना है, सोने के लिए वही एक खाट चाहिए, वो हम सबको मिल रही है, लेकिन बाबा थैंक्स। अगर सचमुच मेरे अंदर निश्चय है, बाबा से प्यार है, तो मेरी आंख इधर उधर कहीं नहीं घूमेगी। ये कहां जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, इसको क्या मिला और मुझे क्या नहीं मिला। तो पहले हम अपने आप को थोड़ा टटोलें, मुझे बाबा में निश्चय है, इतना ऊंचा बाबा, इतना ऊंचा भगवान, जिसको पाने के लिए लोग देखो कितनी तपस्या कर रहे हैं, क्या क्या साधना कर रहे हैं, कितने व्रत उपवास रख रहे हैं, और हमारे बाबा के घर में कितनी खातरी है। सवेरे योग करने से पहले भी आपको लिए चाय तैयार है, मिलती है ना चाय, कई लोगों को आदत है, तो वो फिर सवेरे 4 बजे भी चाय पी के आते हैं, नाश्ता हमें तैयार मिलता है, भोजन हमें तैयार मिलता है। ज्ञान में संशय का प्रश्न कहाँ है? इतनी महान योगी तपस्वी आत्माएं जिनका जीवन पवित्र है, जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ऐसी महान आत्माओं का सानिध्य हमें मिल रहा है, संशय की बात कहाँ है? आगे भक्ति में तो हम एक दिन व्रत रखते थे और एक दिन शुद्ध भोजन खाते थे। आज मेरा शुक्रवार का व्रत है, मुझे नमक नहीं खाना है, आज मेरा व्रत है तो मुझे कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। हमारा तो पूरा जीवन ही व्रत वाला जीवन है। हमारा तो भोजन रोज ही सात्विक भोजन है। आज व्रत है इसलिए मुझे पवित्र नहीं रहना है। पवित्रता ही मुझ आत्मा का जीवन है। मुझे भगवान से इतना बड़ा वरदान मिला है। तो बाबा जो कहता है बच्चे अपने अंदर नशा लाओ, हम कई बार संघर्ष करते रहते हैं। बहन जी, बाबा कहता है ना, अभी थोड़े दिन पहले भी मुरली में था, कोई कोई कहते हैं बाबा क्या करें उल्टे पुल्टे संकल्प आते हैं। अरे तुम संकल्पों से क्यों लड़ रहे हो, भगवान ने तुम्हें क्या दिया है? वाह बाबा, इतना पवित्र जीवन। आज की इस कलयुगी गंदी दुनिया में इतना प्यारा इतना पवित्र परिवार मुझे दिया है, इतने पवित्र हमारे जो देखो बड़े भाई बहने हैं, ये सब हम सब आत्माओं का संबंध तो है ना, कनेक्शन तो है ना। तो अगर हमारे मन में कहीं भी कोई भी संशय है तो आज उसको बाबा के इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना हर संशय यहां स्वाहा करके जाना। जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। बहुत से भाई बहने इन बातों में उलझे रहते हैं, बहन जी किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे खिलाने से और करने से ही मिल जाए तो आज मैं तो सारी दुनिया को ही खिला के अपने वश में कर लूं, मैं तो सारी दुनिया को ही कुछ करके फिर अपना बना लूं। इन बातों से अपने मन बुद्धि को निकालें। निश्चय बुद्धि बाबा के वो बच्चे हैं जो प्रतिदिन कम से कम 4-5 घंटा बाबा की मुरलियों का अध्ययन करते हैं और योग तपस्या करते हैं। कौन कौन अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा और उसकी विधि एक ही है। आज से पक्का करो, मुझे क्या करना है, रोज 5 घंटा बाबा के लिए समर्पित करने हैं। 2.5 घंटा मुरलियों की स्टडी और 2.5 घंटा योग। इसका मतलब ये नहीं आप कहेंगे बहन जी ये तो मुश्किल है, अब 2.5 घंटा तो कैसे निकालेंगे। आप आधा आधा घंटा करके निकालिए, एक एक घंटा करके निकालिए। सवेरे 4 बजे भी अगर आप उठें, नहा के फ्रेश होके 4:30 से 6:30 पर ऐसे नहीं बैठ जाओ और यूं यूं करते रहो, ये वाला योग नहीं करना है। आप बैठिए, पहले बाबा की मुरली का अध्ययन करो, उसमें से पॉइंट लिखो अपनी डायरी में। चाहे अव्यक्त मुरली पढ़े चाहे साकार पढ़े, आपको जो समझ आती है। सारी मुरली नहीं लिखनी है, एक मुरली पढ़ के कम 5 पॉइंट बाबा ने क्या क्या करने को कहा है। फिर जो मैंने पढ़ा है, एक घंटा मुरली पढ़ी, एक घंटा उसका स्वरूप बन के बैठो। अब एक घंटा मुझे बस बाबा से लाइट और माइट लेनी है। बाबा मुझे लाइट माइट दे रहा है। एक बार थोड़ा सीधा होके बैठो, तो सब सीधा होके बैठो। महसूस कीजिए सर्वशक्तिवान शिव बाबा की लाइट, प्रकाश, माइट, शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। मन और बुद्धि रूपी आंख से देखें, बाबा मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। उस चमकते हुए बिंदु को, सितारे को, सर्वशक्तिवान को, सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु को निहारते रहें। देखें अब पलक, पलक झपकनी नहीं चाहिए। मैं आत्मा अपने प्यारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा को देख रही हूं। वो शक्तियां, वो प्रकाश स्वयं में धारण कर रही हूं। ऐसे मुरली पढ़ के अपने आप को अपने भीतर ले जाइए, साइलेंस में ले जाइए। बाबा कहता है अपने अंदर साइलेंस पावर जमा करो। ये विधि है साइलेंस पावर को जमा करने की। बस मैं केवल ये महसूस करूं बाबा की शक्तियां आ रही हैं। बस ऐसे नहीं बाबा क्या करूं, धंधा नहीं चलता, बाबा क्या करूं, मैं बीमार हूं। रोना मत, रोइए। आपका बच्चा भी अगर सारा समय रोता रहे ना तो आप कहते हैं अच्छा तू रो ले जितना रोना है, जब थक जाए तो आ जाना। भगवान के आगे भी बैठकर रोना नहीं रोना, बाबा नौकरी नहीं लगी क्या करूं, जो है जैसा है सब बहुत अच्छा है, बाबा मुझे इस समय शक्तियां दे रहा है और मैं शक्ति ले रही। पहले अपने मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाए, इसको एकदम साफ करें, स्वच्छ करें। फिर आप देखो सारे काम हमारे कैसे होते जाएंगे। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो यही कहते हैं क्या करें, पता नहीं कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा। अब आज तक जो कुछ हो गया फिनिश, फुल स्टॉप। बाबा कहता ना फुल स्टॉप लगाओ, ये विधि है फुल स्टॉप की। तो ये पक्का कर लीजिए, मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूं। और निश्चय बुद्धि की निशानी 2.5 घंटा बाबा की मुरलियों की स्टडी करे और 2.5 घंटा योग करे। करेंगे करेंगे, सोच में पड़ गए, है ना? मुश्किल है ना? मुश्किल नहीं है। सवेरे शाम, क्योंकि आप कहेंगे नहीं ये तो संभव नहीं तो आप करेंगे ही नहीं। अरे 2.5 नहीं करोगे तो 2 घंटा करना, 1.5-1.5 घंटा करना। पर बिल्कुल हाथ पे हाथ ही, ये तो मुश्किल है बहन जी, ये बात तो नहीं। हम फिर पता है क्या कहते हैं भाई, देखो बहन जी हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलते रहते हैं, फिर कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते। देखो भाई 2.5 घंटा तो नहीं हो सकता, इसमें झूठ और सच की बात नहीं है, दृढ़ता की बात है। नहीं मुझे करना है, अगर मुझे प्राप्ति करनी है, प्राप्ति तो देखो कितनी ऊंची है, विश्व का मालिक बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, राजाओं का राजा बनना है, संस्कारों का परिवर्तन करना है, विकारों पर विजयी बनना है, प्रकृति जीत बनना है, क्यों नहीं करेंगे? ये डिग्रीज लेनी है, प्रकृति जीत बनना है। किस किस को बनना है प्रकृति जीत? कर्म इंद्रियां जीत, विकारों पर जीत, विश्व का मालिक। देखो सब ऐसे दो दो हाथ उठाते हैं। और दो दो घंटा मुरली पढ़ेंगे और योग करेंगे, तब तो ऐसे करते नहीं। तो दो ऊंचे हाथ उठाइए, ऊंचा हाथ उठाइए, दो घंटा पढ़ेंगे मुरली और दो घंटा करेंगे योग। तो आप जैसे निश्चय बुद्धि बच्चों को ही बाबा दिल से बहुत बहुत प्यार करते हैं, और आपको कहना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना बाबा का आशीर्वाद, इतनी बाबा की शक्ति आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि अरे हमारी गाड़ी तो यूं ही चलती जा रही है, जैसे ट्रेन चलती है ना, इंजन आगे चलता है, बाकी डिब्बे अपने आप खींचे चले जाते हैं, डिब्बों को कोई खींचना नहीं पड़ता, ऐसे बस शिव बाबा हमारा इंजन है, हम डिब्बे ट्रैक पर अपने आप चलते चलेंगे। तो आप निश्चय बुद्धि और बाबा के विजयी, सफलता मूर्त, सदा आगे बढ़ने वाले बच्चे रहें, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। अभी दादी जी आएंगे, मुन्नी बहन आएंगे, आपको सौगात भी मिलेगी, निश्चय बुद्धि की परख भी होगी, मारा मारी नहीं, आराम से सब लाइन में आना, अभी से लाइन नहीं बनानी है, और एकदम सब एक्टिव होकर योग में बैठो, ऐसा जो एकदम बाबा नीचे आ जाए, और संकल्प करो बाबा मुझे लाइट और माइट दे रहे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में